ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवत महापुराण से पाठ अष्टम स्कंद सप्तम अध्याय श्लोक संख्या 33। ए तु आत्मराम गुरुभिः हृदि चिन्तितां घ्रीं द्वन्द्वं चरन्तमुमया तपसाभितप्तम् कथन्त उग्रपुरुषं निरतं श्मशाने ते नूनमुतिमविदन् स्तवहात लज्जः। सिद्धार्थ, ये जो व्यक्ति तू निसंदेह आत्मराम गुरु भी जो आत्मतुष्ट है और संसार भर के गुरु माने जाते हैं, हृदि हृदय में चिंतित अंघ्रि द्वयम् आपके दोनों चरण कमलों का चिंतन करते हैं, चरंतम विचरण करते हैं, उमया अपनी पत्नी उमा के साथ, तपसा अभितप्तम तपस्या द्वारा उच्च पद को प्राप्त, कथ्यन्ते आपके कार्यों की आलोचना करते हैं, उग्र पुरुषम अभद्र व्यक्ति, निरतम सदैव श्मशाने श्मशान में ते ऐसे व्यक्ति नूनम निसंदेह उक्तिम ऐसे कार्यकलाप अविदन न जानते हुए तब आपके कार्यकलाप हातलज्जा निर्लज्ज। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद, सारे विश्व को उपदेश देने वाले महान आत्मतुष्ट व्यक्ति अपने हृदयों में आपके चरण कमलों का निरंतर चिंतन करते रहते हैं, किंतु जब आपकी तपस्या को न जानने वाले व्यक्ति आपको उमा के साथ विचरते देखते हैं तो वे आपको भ्रमवश कामी समझते हैं, अथवा जब वे आपको श्मशान में घूमते हुए देखते हैं तो भ्रमवश वे आपको अत्यंत नृशंस तथा ईर्ष्यालु समझते हैं। निसंदेह वे निर्लज्ज है, वे आपके कार्यकलापों को कभी नहीं समझ सकते हैं। तात्पर्य, शिव जी सर्वोच्च वैष्णव है, वैष्णवानां यथा शंभु, इसलिए कहा गया है वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझे। यहां तक कि बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी यह नहीं समझ सकता कि शिव जी जैसा वैष्णव क्या करता है अथवा कैसे करता है। जो लोग काम तथा क्रोध के वशीभूत हैं वे शिव जी की महिमा का अनुमान नहीं लगा सकते। जिनका पद सदैव दिव्य है, काम इच्छाओं से संबंध सारे कार्यों में शिव जी आत्मराम के निमित्त मात्र है। अतएव सामान्य व्यक्तियों को शिव जी तथा उनके कार्यकलापों को समझने का यत्न नहीं करना चाहिए। जो शिव जी के कार्यकलापों की आलोचना करने का प्रयास करता है वे निर्लज्ज है। ओम अज्ञानं तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदे अहम श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं सग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखानुतं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज प्रातःकालीन भागवत कक्षा में उपस्थित सभी भक्त वृंद मातृ वृंद को मैं विशेष स्वागत करता हूँ। ये श्रीमद् भागवत का अष्टम स्कंद अंतर्गत ये सप्तम अध्याय में ये जो प्रसंग आप सुन रहे हैं इसमें भगवान शंकर के स्तुति संपूर्ण प्रजापति वर्ग कर रहे हैं। घटना चक्र इस प्रकार है, जब समुद्र मंथन करने के लिए भगवान की सलाह में देवता लोग आकर के असुरों को प्रस्ताव दिए, दोनों देवता और असुर मिल करके इस अमृत के लोभ से इतने बड़े प्रोजेक्ट हाथ में ले लिए और लेकर के जैसे जैसे उनको बताया गया था, सबसे पहले समुद्र तो था, उसको कोई बनाना था नहीं, लेकिन मथानी दंड और रस्सी ला करके केवल चाणी के मथना है, बस इतना काम करना है। मथने दंड रखा हुआ है, रस्सी भी रखा हुआ है, समुद्र भी रखा हुआ है, उसके अंदर अमृत भी रखा गया है और बाकी बहुत चीज रखा है। आपको केवल थोड़ा सा परिश्रम करना है, करके निकाल लेना है। जैसे गाय है, बछड़ा है, दूध उसका अंदर है, हाथ थोड़ा धोना है, बस दूध निकालो। तो इतने अमृत निकालने का सारे भगवान ने प्रोसेस बता दिए। तो फिर सागत था, उसको उठाकर लेना देना नहीं था, मथानी दंड को चाणिंग रड को लाना था। तो आप सब पढ़कर आए हैं जिस प्रकार उन्होंने इस मंदर पर्वत को जो मथानी के चाणिंग रड है उसको लाने के लिए गए, क्या क्या घटना हुआ, बहुत बड़े दुर्घटना हो गया, जिससे भगवान की कृपा से बचे। तो उसको ला करके लाए, भगवान ने अपना गाड़ी में लोड करके ले आए गरुड़ जी से, लेकिन वो रस्सी नहीं आ रहा था। रस्सी बोला, भाई वो गाड़ी खड़ा है, हम नहीं जाएंगे। तो गाड़ी की भगवान ने हटाए तो रस्सी आया, समझ रहे ना रस्सी क्या है, रस्सी है वासु की नाग, गरुड़ जी के साथ तो नहीं आ सकते वो जब खड़े रहेंगे। तो गाड़ी की पार्किंग में भेजना पड़ा, तो रस्सी आया तो बांध कर खींचे, कई प्रकार के कठिनाई, वो पहाड़ टिक नहीं रहा था, पानी में डूब जा रहा था। तो भगवान कछुआ बन करके टिकाए, फिर के तो डोल हिल डोल कर रहा था, ऊपर में भगवान बैठ करके सहस्रवाहु होकर के उस बालांश पकड़ के रहे। तब मंथन शुरू हुआ। मंथन शुरू हुआ, मंथन शुरू होने से बोले और भी एक इवेंट हो गया, कौन किस हिस्सा को पकड़ेगा उसमें झगड़ा चल गया। देखिए हर स्टेप में इतने बड़े फायदा, अमृत प्राप्त करने के लिए दोनों मिल करके प्रोजेक्ट हाथ में लिए हैं, लेकिन फिर भी जो अहंकार अपना घमंड इतने प्रचुर मात्रा में है कि हर स्थिति पर हमको गड़बड़ कर रहा है। अब देवता लोग मुंह की तरफ पकड़े थे, असुर लोग जैसे देखे हमको पूछ की तरफ पकड़ने बोलते हैं, छोड़ दिया हम नहीं करेंगे गाली, तो क्या समझ रहे हैं हम ऐसे गिरे गिरे, क्या समझ रहे हैं हम, क्यों पीछे की तरफ पकड़ेंगे, जहां टैलेंट करता हम क्यों पकड़ेंगे। देवता लोग बोले भाई आप असुर है, आप लोग को कुछ ऊंची पूछेंगे, हम लोग कुछ पवित्रता मेंटेन करना होता है, हम पूजा वूजा करते हैं, आपको क्या है, आप तो कोई सुबह उठते नहीं मंगलाते नहीं करते, हमको शांतम करना पड़ता, हमको सामने जाने दो, हम क्यों टॉयलेट के पास रखते हैं। बोले है नहीं हम किस चीज में कमी है। तो देवता लोग भगवान को पूछे देखो ऐसे कर रहे हैं, चुपचाप कुछ मत बोलकर चले जाओ पीछे, न सार सार फार नहीं, जाओ पीछे। बेचारे चले गए पीछे, असुर लोग पूरे देखा हुआ ना, हम आएंगे क्या समझ, बड़े अहंकार घमंड में आकर के मुंह की तरफ पकड़े, पकड़ करके दो चार कस खिंचा, इतने हुआ है वासुकी का पूरा पहाड़ को, इतने पूरे देवता पूरे असुर खींचेंगे तो वासुकी का तो मुंह से पूरा ज्वाला विष निकला, तो सब सुलझ गए झुलस गए असुर लोग। अब तो तभी समझ में आ रहा था, देवताओं को समझ आ रहा था हम अच्छा के पीछे आ गए, नहीं तो हम मर ही जाते, वो इतने बलशाली हो जिसको संभाल नहीं पाते, हम तो कभी से आउट हो गए होते, तो मर रहे थे। लेकिन तथा फिर भी मंथन चला, मंथन में अमृत दुर्ग का सबसे पहला चीज जो समुद्र मंथन से निकला वो क्या था, बीस, उस हलाहल बीस निकला, और अमृत के लिए मंथन किए थे निकला क्या, अब लो ये आजकल जो हम कोई काम करते हैं गड़बड़ी हो जाते हैं, हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए, ये तो आदि सृष्टि से सत्ययुग के प्रारंभ में भगवान कहने पर सारे देवता असुर इतने महाशक्ति मिलकर इतने बड़े काम करके भी, कितने बार भगवान के कृपा के सहायता लेते हुए भी जब काम में लगे तो सबसे पहले रिजल्ट क्या निकला, बीस। तो इसलिए कभी हम काम करते हैं गड़बड़ी हो जाते हैं, ये नहीं होना चाहिए कि मतलब नहीं, यही प्रोसेस है, यही प्रोसेस है। भगवान कहते हैं कि अगर कोई सही चाहते हैं, जतदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम, जो कार्य पहले से विष जैसा होता है वो बाद में क्या बनेगा, अमृत होगा, जो पहले अमृत जैसा है बाद में विष होगा। तो अमृत को पाने के लिए पहले विष होना चाहिए, ये प्रिंसिपल यही उपाय है। तो विष निकला, विष की तो कोई नहीं चाहते, दोनों में वही बाकी चीज के लिए तो होड़ निकला कंपटीशन, तो 20 जब निकला बोलते हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए, कौन लेगा उसको, और 20 तो निकल कर फैलते जा रहा, समुद्र से निकला भी तो वासुकी के 20 तो जैसे कम डोज है चल जाता, सांप के 20 को संभाल लेते हैं वो लोग, लेकिन जो समुद्र से हलाहल 20 निकला, अब इस 20 को जिस 20 के कारण से वो चूहे सांप में से 20 आया, वो तो भयानक 20 था, अब उसको क्या करें, किसी की बुद्धि नहीं निकला, पूरे संसार मरने लगे विष के प्रभाव से, तो सब मिल करके अभी काम दाम छोड़कर बोले इससे कैसे बचो, काम आगे क्या बढ़े, अब तो मर जाएंगे रहेंगे नहीं। तब भगवान शंकर अपने तपस्या में थे, वो नहीं आए थे, तो दौड़े सब कैलाश के पास भगवान के शरण में जाने के लिए, जाकर भगवान के पास पहुंचे, उनके साथ भगवान भी थे। जब सारे प्रजापतियों देवताओं ने असुर लोग सब गए तो उनके साथ ऐसे नहीं थे भगवान ही थे, वो भी उनके साथ गए, वो भी बताए होंगे भाई क्या करें, चलो उन्हीं के पास चलते हैं। भगवान शंकर बैठे थे अपने आसन लगा करके, अपने ध्यान में बैठे थे, पार्वती जी पास में बैठी थी, पूरे लाखों संख्या में सारे लोग जा करके गेट में पहुंच करके खूब स्तुति किए, उनका तो कोई सिक्योरिटी गेट फट कुछ होता ही नहीं, शंकर जी घर ही नहीं तो क्या होगा, उनका घर होता ही नहीं, पेड़ के नीचे बैठते हैं, उस पेड़ के नीचे पहुंचकर चारों तरफ घेर करके उनको स्तुति किए, और स्तुति किए तो भगवान के नेत्र खोला शंकर भगवान के, उन्होंने देखे तो जो बातचीत होगा, शंकर जी आश्चर्य होकर देख रहे हैं कि क्या हो गया उन लोग को, लेकिन ये जो स्तुति किए बड़े लंबे समय किए, शंकर जी को ध्यान आकर्षण करने के लिए संपूर्ण देव समाज, असुर समाज, प्रजापति वर्ग मिल करके भगवान शंकर के शरण में जाकर के जो उनको प्रशंसा वाक्य, जो स्तुति वाक्य कह रहे हैं, ये एक स्तुति का एक वाक्य है। श्लोक श्लोक स्तुति चल रहा है, तो स्तुति क्यों आवश्यकता है हम आलोचना करते हैं। भागवत में पूरी संपूर्ण भागवत में शायद 75% हिस्सा केवल स्तुति है ना। नहीं आप मार करके देखिए, स्तुति ही स्तुति बस प्रशंसा वाक्य, क्योंकि इसी के द्वारा काम निकालना होता है। आजकल इस भौतिक संसार में भी आपको कुछ कार्य करना होता है जिससे काम निकालना है, तुमसे है ना, नहीं सेम प्रोसेस, तभी युग से आया है तो ही प्रोसेस, तो इसीलिए भरा पड़ा है। भगवान से किससे भी कुछ से काम लेना है तो करना पड़ेगा, तो वही शंकर भगवान की जरूरत पड़े कि गाली देंगे, झगड़ा करेंगे, लेकिन फिर भी स्तुति करेंगे। जब अपना काम निकालना होता स्तुति करना पड़ेगा, तो जाकर खूब स्तुति किए उनके। तो स्तुति में एक वाक्य है ये श्लोक का, जिसमें सारे प्रजापति वर्ग कहते हैं, ये तु आत्म राम गुरु भी चिंतितांग्री। वो लोग कहते हैं कि हे शंकर जी, जो जो ये संसार में सबसे बड़े समझदार व्यक्ति होते हैं, जो आत्माराम है, आत्माराम कहने का अर्थ है जो दूसरे से कोई प्रकार की आराम की आशा नहीं रखते, अपने आप में ही सुख प्राप्त करते, दूसरे किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी परिस्थिति को निर्भर नहीं करते, उनको कहा जाता है आत्माराम। आत्मे रमन्ति इति स आत्माराम, जो अपने आप में आनंद उपभोग करते हैं, दूसरे का कोई मदद नहीं चाहिए जिसको, ऐसे आत्माराम, ऐसे आत्माराम। और जो संसार भर के गुरु पद में है, सबको उपदेश देने वाले हैं, ऐसे आत्माराम गुरु के कोई उदाहरण जानते कौन है? आत्माराम समुनयो, तो इस श्लोक में आत्माराम में दो कोटि के व्यक्तियों का नाम आया है। भगवान चैतन्य महाप्रभु जब इस कुछ आलोचना कर रहे थे, पहले आत्माराम में वो रखे श्री सुखदेव गोस्वामी को, दूसरे आत्माराम में रखे चतुर कुमार को। बोले ये आत्मा में रमण करने वाले पुरुष सुखदेव गोस्वामी आत्माराम इसीलिए है आत्मा रमण करते, क्योंकि वो जन्म होने से पहले ही उनको ये ज्ञान हो चुका था, तो मातृ गर्भ से बाहर ही नहीं आता था, बाहर निकलना नहीं चाहता था। भाई कोई भी ज्यादा से ज्यादा 10 महीना में डिलीवरी हो जाना चाहिए, लेकिन 10 महीना क्या, 10 साल बीत गया, कोई 10 साल तक गर्भ से संतान बाहर ना आए तो इस मां के क्या हालत होगा, सोच सकते हैं? और सुखदेव उसमें बाहर नहीं आते, 12 साल तक नहीं आए, 12 साल तक आजकल कोई 9th क्लास में पढ़ता है, 10th क्लास, तो हाई स्कूल स्टूडेंट वो अंदर बैठा बाहर नहीं आ नहीं आ रहे थे कि पिताजी बड़े व्यस्त होकर के प्रार्थना करते हैं उनको कि बेटा मेरे आ जाओ, वो बात भी करते हैं अंदर बैठ करके, गर्भ के अंदर बोलते पिताजी मैं नहीं आऊंगा, क्यों? ठीक ठाक है यहां मैं ठीक हूं, बाहर जाऊंगा तो माया के प्रभाव है। पिताजी बोले देखो मैं तुझे गारंटी देता हूं, मैं तुझे ब्रह्मचारी रखूंगा, शादी नहीं करवाऊंगा, माया के चक्कर से फंसना नहीं दे, तू आ जाओ वहां। तो अंदर से उनके पुत्र बोले पिताजी आपके बात पर क्या गारंटी, क्या भरोसा है, आप स्वयं तो फंसे हैं, मैं कैसे विश्वास करूं आपके बात पर बाहर आ जाऊं मैंने। अरे बताओ, कोई पुत्र अभी पैदा ही नहीं हुआ पिताजी के बात को अमान्य कर दे, चतुर कुमार तो पैदा होने के बाद पहले पिताजी की बात को लिखा की थी, वो पैदा होने से पहले मना कर दे पेट में रह करके मना कर दिए, बोले नहीं हमकी बात नहीं मानते। वो शिव जी ना व्यास देव जी अफंडेड फील किए, बोले बताओ ये बेटा तो अभी पैदा ही नहीं हुआ, अभी से मेरे बात नहीं मानता, मेरे मुंह में जवाब देता है, क्यों? क्योंकि आत्मा रमण कर रहे थे, उनको पड़ी नहीं था बाहर आना क्या होना, इतने भयानक गर्भवास, इतने भयानक कष्टप्रद स्थिति, लेकिन उसमें भी उनको आनंद लेते थे। तो उनके सलाह में अंदर बैठ करके उनने सलाह दिए, भगवान को बुला कर लाए, उनके एफिडेविट साइन किया गया, तो बाहर आए उनने। लेकिन बाहर आए भगवान ने बोले कि मेरे माया तुझे प्रभाव नहीं करेगा, तो माया प्रभाव नहीं किया। गर्भ से बाहर आकर के मुंह मोड़कर देखे नहीं मेरे पिताजी की दाढ़ी है कि सेविंग की क्या है, देखे नहीं, माता पिता की ओर मुंह भी नहीं मोड़े, चल दिए जंगल की ओर। पिताजी हा पुत्र करके पीछे दौड़ रहे थे, पीछे मुड़ के देखे भी नहीं, क्योंकि इतने संतुष्ट थे, इतने आनंद मग्न थे, अपने आप में ही, किसी के ऊपर, मां बाप किसी भी चीज के ऊपर निर्भर नहीं थे। ऐसे पुरुष को आत्माराम समझ, ऐसे ऐसे उरुक्रम आत्माराम व्यक्ति भी भगवान के पास खींचे आते हैं। तो ऐसे चतुर कुमार भी ऐसे घूमते थे, अपने आप को छोटे बनाकर अभी भी घूमते, अपने आप मन किसी के ऊपर भरोसा नहीं करते। ऐसे ऐसे आत्माराम जो जगत के गुरु, ऐसे ऐसे पुरुष भी क्या करते हैं, न चिंतंती अंग्री, आपके श्री चरण कमल को आपने हृदय में धारण धारण करके चिंतन करते। किसका चरण कमल को? भगवान शंकर को सारे देवता कहते, हे शंकर जी, आपके श्री चरण जुगल को बड़े बड़े आत्माराम मुनि सिद्ध, बड़े बड़े उपदेश का व्यक्ति आपके हृदय में आपके श्री चरण को धारण करके उसको चिंतन मनन कर रहे हैं, हमेशा आपके हृदय में धारण करते हैं। और दूसरा क्या बोलते हैं, दो द्वंद्व में फंसे हुए हैं, जो लोग आपके महिमा को नहीं जानते हैं, आपके प्रभाव, आपके तपस्या को नहीं जानते हैं, वो लोग ऐसे बड़े बड़े आत्माराम पुरुष तो आपके हृदय में आपके चरण धारण करते हैं, लेकिन जो लोग आपके महिमा को, प्रभाव को नहीं जानते हैं, वो लोग अगर आप कभी देखते हैं, आप अपने वाइफ के साथ में कहीं टूर में जाते हैं, कहीं घूमते हैं, तो देख कर बोलते हैं, ये वाह देखो ये कैसा है, लाल कपड़ा पहन करके आप पत्नी के साथ घूम रहा है। अब उनको साधारण पुरुष मानते हैं, और जब भगवान शंकर अपना ऑफिस में रहते हैं तब उनको बोलते हैं कि ये कितने अभद्र है, असभ्य पुरुष है, उग्र पुरुष करके मानते हैं। इन व्यक्तियों को जो ऐसे आपको मानते हैं, उनको क्या कहा गया, ते हत लज्जा, ओ उनके पास शर्म है नहीं, शर्म खत्म हो गया उनके पास। शर्म एक चीज, लज्जा एक चीज, बहुत बड़े गुण होता है जीव के, ये अवगुण नहीं है, ये गुण है। नारियों को तो भूषण माना गया है, अलंकार है उनका। तो जिनके लज्जा खत्म, निर्लज्ज हो गए, बेशर्म हो गए, वो इसे बात कहेंगे, लेकिन जो आत्माराम है वो तो आपके श्री चरण को हृदय में धारण करते हैं, हृदय में धारण करते हैं। क्यों धारण करते हैं आपके चरण को? क्योंकि वो जो आत्माराम गण, वो देखते हैं कि हम तो आत्मा में रमण करते हैं, किसी को भरोसा नहीं करते हैं सुख के लिए, लेकिन ये जो सुख, उनका जो सुख भगवान शंकर को देखते हैं कि उनका कनेक्शन भगवान के साथ कितने इंटेंस है, कितने गहरा है, और वैराग्य कितने तीव्र है, इनको देख करके वो लोग बोलते हैं कि अनपरालाल, उनके साथ समान नहीं किया जा सकता। कोई भी भगवान शंकर को थोड़ा सा ढंग से सही नजर में देखे तो समझ पाएगा, बाहरी दृष्टि से देखे तो निर्लज्ज हो जाएंगे। निर्लज्ज शब्द इसलिए आया है क्योंकि निर्लज्ज क्योंकि मूर्ख कहा जा सकता है। निर्लज्ज क्यों कहें भागवत, कि जो लोग शंकर को ना समझ कर इस प्रकार बोलते हैं कि ये पत्नी के साथ घूमते हैं और शमशान में घूमते हैं, असभ्य है, उनको निर्लज्ज क्यों कहा गया? क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं, एक कथा आप सुने होंगे, एक सुई है और एक सालनी होता है, सालनी समझते ना, जिसे वो सालनी बोलते ना, हाँ अटो, सालनी में कितना होल होता है, हाँ? गिनती तो कभी किए नहीं होंगे, लेकिन सैकड़ों हजारों है ना, नहीं लेकिन वो छलनी सुई को देखकर बोलता हंस रहा है, बोले अरे कितने बेकार पुरुष है, छेद है आपके पीछे यार, बोले आपका देखा नहीं तूने क्या है तूने, इस प्रकार उसको बीच बाजार में उसको क्रिटिसाइज कर रहा है सुई को, तो बाकी लोग क्या समझेंगे छलनी को, प्रशंसा करेंगे, बोले अरे तू बेशरम कहेंगे, तेरे पीछे देखा नहीं हजारों छेद तो तू ही लेकर घूम रहा है, उसको एक के लिए बोल रहा बेशरम, उसी को बेशरम माना, किसको बेशरम माना जाएगा, छलनी को, क्योंकि आपने में सहस्रों सहस्रों छेद गिर है उसी को देख नहीं रहा है और एक छेद दूसरे में देख रहा है, उस छेद को देख रहा है। तो इसी प्रकार हम लोग को हजारों लाखों करोड़ों दोष में दोषी हैं, इतने दोष इतने छिद्र इतने बेवकूफी भरा है, आपाद मस्तक हर इंच इंच में दोषग्रस्त हैं, छिद्रग्रस्त हैं, और उसको तो हम देख नहीं, अंतर्दृष्टि नहीं, और दिखाई पड़ता है जो इतने निर्मल पुरुष हैं उनको न जान कर न समझ करके उसी को देख कर बोलते अरे देखो उनके छिद्र है, तो उनके कहने पर कोई भी पब्लिक नहीं मानेगा कि उनको कह रहा है, कि बोलेंगे अरे तू बेशरम कहेंगे, तेरे पीछे लाखों है तो उनको बोल रहा है, शर्म नहीं आता तुझे, है ना। ठीक इसीलिए हम जो संसारी पुरुष मूर्ख हैं, भगवान शंकर के वास्तविक महिमा को नहीं जानते हुए उनको इस प्रकार कहते हैं, देखो ये श्मशान रहते हैं, कपड़ा नहीं, घाट नहीं, ये नहीं, ऐसे बोलते हैं, तो हम लोग सब महाबेशरम है, शर्म एक परसेंट भी नहीं है हमारे पास, क्योंकि हम इतने निर्लज्ज है, इसलिए इसे वाक्य कहते हैं। भगवान शंकर यहां कहता है श्मशान निरतम, श्मशान में रहते हैं, किस श्मशान में रहते हैं, आपके मन में कई प्रकार भाव उठ सकता है, भगवान शंकर श्मशान क्यों रखते हैं, भगवान चुने आपको कोई जगह नहीं मिला ठहरने के लिए, श्मशान में रहना चाहते, एक तो रहते हैं उनका घर तो कैलाश में बटगर बटवृक्ष के नीचे है, लेकिन वहां अपना रेजिडेंस है, लेकिन ऑफिस उनका श्मशान, ऑफिस कहां है, श्मशान में, श्मशान आप लोग देखे हैं ना, कभी जाएंगे श्मशान को अपने, कभी टूर में विजिट के लिए थोड़ा श्मशान घूमकर आते हैं, चलिए कभी जाएंगे, कोई कोई दोस्त बोलेगा चलो थोड़ा घूमकर आते हैं, पार्क में चले जाते हैं, इधर श्मशान में चले जाते हैं, श्मशान तो हर गांव के पास होता है, दिल्ली में भी कहीं से होगा, कभी कोई टूर में गए आपने, अरे बाप रे नाम लेने से भी क्या हो गया तेरा, श्मशान का नाम क्यों लेता है, कोई पार्क के क्लब के सी बीच के रिवर बीच के बात करो, श्मशान का नाम, हम कतरा उठते हैं श्मशान का नाम लेने से, संसारी प्राणी, लेकिन ये आपने ऑफिस को चुने श्मशान, यहां तो हम लोग जाएंगे भी नहीं, क्यों, क्योंकि भगवान शंकर का भगवत नाम के प्रति इतने रुचि है, नाम के प्रति इतने आसक्त है, हमेशा नाम सुनना चाहते हैं, लेकिन कोई पार्क में सी बीच में कोई क्लब में हाउस में रोड में और बाकी सुंदर स्थान में कोई करते हैं फिल्म गाने ये वो कचड़ेबाजी सब चलता रहता है, वही संसारी प्राणी निर्लज प्राणी भी अगर बाइक स्मार संसार में तो कभी कभी जाना होता, कब जाना होता है, ऐसे टूर में तो कभी जाते नहीं, कब तो सब समझाना होता है हमको, अगर हमारे कुटुंब में भाई संबंध में कोई निकल गए तब तो जाना ही पड़ेगा भाई, नहीं तो बंधुत्व संबंध कट जाएगा, मैं लेकर जाना पड़ेगा ना, तो तब वो जाते हैं तो किस भाव में जाते हैं, क्या बोलकर जाते हैं, बोलना पड़ता ना विवश होकर के, महानास्तिक क्यों ना हो श्मशान में तो सुनाई पड़ेगा राम नाम सत्य है हरि नाम सत्य है, तो शंकर ही बैठते हैं, चलो ये महा से बेकार आदमी जब इधर आता है तो बाकी कुछ गाना नहीं लगाता, क्या करता है हरि नाम करता, सबसे भद्दा से भद्दा बेकार व्यक्ति भी अगर श्मशान आना चाहता है सपरिवार सीरियसली हरि नाम सत्य है राम नाम सत्य है, इतने बढ़िया स्थान कहां मिलेगा जहां सबसे रिजेक्टेड से रिजेक्टेड व्यक्ति भी प्रवेश करने से पहले हरि नाम ले लेकर आए सच्चाई कीर्तन करके, बाकी कोई जगह ऐसा है जहां हरि नाम गूंजे नहीं, तो शंकर ऐसे स्थान चुने जहां बैठने से ही कोई भी व्यक्ति आए आते ही हरि नाम करते आएगा, जब तक रहेगा वही ध्यान रहेगा, हरि स्मरण हरि शरणम हरि शरणम हरि स्मरणम हरि नाम वही रहेगा, वो भाव रहेगा, इससे बढ़िया पवित्र सही जागा कोई मिलेगा, जो भगवत नाम के प्रेमी है वही उनका रस जानते हैं, वो इस जागा को चुनेगा, हम जो भगवत रस का भक्त कुछ है ही नहीं, पता ही नहीं है, तो हम क्लब हाउस पार कहीं चुनेंगे? तो नीलज कौन है बताओ? उनको बोलेंगे अरे स्मशान में रहता है। छी बताओ कौन नीलज है? छिछिकार किसको करना चाहिए, है ना? और वस्त्र ही नहीं पहनते, कपड़ा नहीं पहनते हैं। वैराग्य देखिए शंकर जी के कितने तीव्र वैराग्य है। वस्त्र नहीं पहनते हैं, अलग रहते हैं संसार से, बिल्कुल अलग। और संसार के सृष्टिकर्ता वही हैं, पूरे सकल संसार का दायित्व उन्हीं के ऊपर है, ईश्वर हैं, लेकिन संसार से अलग रहते हैं। क्या अनासक्ति देखना है तो शंकर जी के चरित्र में देखना, कितने बड़े अनासक्त हैं। कोई चीज संसार के नहीं लेते, एक आध मीटर कपड़ा पहन लेते नहीं, एक व्याघ्र चर्म या कोई चमड़ा ला करके, अरे चमड़ा बांधने के लिए, गांठ बांधने के लिए कोई है नहीं, बेल्ट फेल्ट वही नहीं, एक सांप लाकर बांधेंगे गांठ करके, एक सांप बांधते हैं। और कोई गामछा नहीं, कपड़ा नहीं, कुछ नहीं, गामछा कपड़ा क्या जरूरत है? शरीर में पाउडर तो लगाते नहीं, कौन सा पाउडर लगाते हैं? ताजा फ्रेश, अभी अभी जला हुआ डेड बॉडी का जो राख, उसी को लगा देंगे शरीर में। वाह, हम लोग तो डर जाएंगे, उन्हीं को लगाते हैं, पूरा भस्म धारण करके, और भी अलंकार हाथ में, गले में, इधर उधर माली हम लोग लगाते हैं, कोई कवच ये वो, और सर बढ़िया सुंदर चांदी सोने की, उनकी वो क्या लगाते हैं? शंकर जी को जानते ना क्या लगाते हैं? खाली सांप, सांप तो साइड आइटम होता है, नरमंडमाल फेस, मनुष्यों के मस्तक कटा हुआ ब्लड टपकता होगा, अभी अभी ब्लड चुता होगा, सर को माला बना करके नरमंडमालम, ओ अपने पत्नी दोनों ही यही से नरमंड करके रहेंगे, क्या माला है, कोई जाएगा उनके पास? संसारी भौतिक जो भोगी व्यक्ति सोच भी नहीं सकता, इतने खतरनाक भयानक उनके चेहरा जाएगा नहीं, उनका कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। हम लोग को भी बोलते हैं ये डिस्टर्बेंस है, ये नहीं होता, ये नहीं होता, तो वो तो ऐसे अपने रूप बना करके डिस्टर्बेंस ही कोसों दूर भागेगा, जाएगा नहीं उनके पास, कोई ऐसे भयानक रूप बना कर रखें। और हम जब कभी जीवन भर के पाप करते करते गंदे हुए हुए बोलते हैं चलो अब बहुत हो गया, थोड़ा गंगा में डुबकी लगाते हैं, पवित्र हो जाएंगे। जिस गंगा को स्पर्श करके हम पवित्र होने के लिए, मुक्त होने के लिए विचार करते हैं, उस गंगा को तो कंटिन्यूअस 24 घंटा सर में धारण कर रखे, गंगा धर नाम ले रखे, तो उनको फिर स्नान करने क्या जरूरी? सर के ऊपर जिसका गंगा अनवरत निवास कर रही है, जो गंगा को धारण करके गंगाधर, गंगा को क्यों धारण किए? क्योंकि भगवत चरणामृति, भगवान के प्रति, भगवान शंकर के कितने अटैचमेंट, कितने लगाव है, भगवान के चरण धोवन जल को हमेशा के लिए सर में रख लिए प्याक करके, हमेशा के लिए, तो पवित्र है। भगवत नाम जप करेंगे, कभी कभी हम बैठ करके कोई, हम जाते हैं बड़े सिद्ध पुरुष माने जाते, कोई 3 घंटा एक आसन में बैठ करके अगर नाम जप आदि कोई, तब क्या सुमान दो, तो सिद्ध हो गया, है ना? हम लोग तो 30 मिनट भारी पड़ जाता है, लेकिन 3 घंटा ऐसे माना गया है, कोई एक मुद्रा में एक आसन रहकर जप करता। तो शंकर जी के इसे बताया गया पुराण में, वो जब एक सिटिंग चैंटिंग करने के लिए बैठते हैं, कितने समय बैठते हैं मालूम? ओनली 88,000 ईयर्स, सन 88,000, एक सिटिंग का बात है, एक बार माला लेकर बैठ गए तो इतना समय बैठेंगे, फिर दूसरा सिटिंग। तो उनको समझ सकते हैं उनके भगवान के प्रति कितने लगाव है, कितने पहुंचे व्यक्ति है, कितने अनुभवी व्यक्ति है उन्होंने, इतनी हजारों करोड़ों साल तक जप साधन करके, और कुछ नहीं, और काम भी भगवान ने उनको ऐसे संसार के लिए दायित्व दिए, भौतिक संसार का, और संसार का जो काम कोई नहीं करना चाहेगा, आपको कई नौकरी वाकरी मिलता है, काम आप चूज करेंगे, नहीं नहीं ये ठीक नहीं, ऐसे वाला दे दो ना, ऐसे वाला दे दो ना, रहने के लिए स्थान, करने के लिए काम, हम वो चूज करते हैं, शंकर जी नहीं कर सकते चूज, वो चूज करके इसे काम लिए, कोई भी दुनिया में प्राणी उनको छोड़कर उसको पसंद करेगा ऐसे काम लिए करने के लिए। प्रलय रचना, संहार करना, सबको मार पीट कर खत्म करना, ये डिपार्टमेंट उनका पास है। तो इसलिए उन्हें स्मशान अपना स्टाफ ऐसे रखना पड़ेगा, सबको मार पीट करने के लिए, खतरनाक काम करने के लिए खतरनाक स्टाफ रखना पड़ेगा। तो इसलिए भूत प्रेत पिशाच डाकिनी इत्यादि इत्यादि उनके स्टाफ में रहते, वो सब स्मशान में मिलते हैं, उनके साथ रहते हैं। जो ऐसे सबसे गए बीते व्यक्तियों को भी उद्धार करने के लिए उनके साथ रहते हैं, उनको अपना संग देते हैं, उनको उद्धार करते हैं, कितने उच्च कोटि के करुणामय व्यक्ति होंगे, है ना। तो उनको बाहरी भाव से देखने, जैसे चित्रकेतु महाराज ने देखे थे, चित्रकेतु ने भी, उन्होंने भी संकर्षण को ध्यान देते, वो भी संकर्षण के भक्त गुरु भाई होंगे दोनों। तो उनने जब देखे कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों के बीच में, ब्रह्मवादियों के बीच में शंकर अपने पत्नी को गोद में ले, कपड़ा तो पहनते नहीं, गोद में लेकर बैठे हैं और क्लास देते रहते हैं, तो हंसने लगे ठिठा कर, बोले देखो है, हंस करके। लेकिन शंकर चित्रकेतु ने बात अगर ठंड से पढ़ेंगे, चित्रकेतु बोलते हैं कि आश्चर्य बात, अति आश्चर्य बात है, भगवान शंकर जैसे बड़े महापुरुष पहुंचे हुए व्यक्ति वो इसे काम कर रहे हैं। इसमें शंकर जी की महिमा प्रकट होता है कि अटलीसी सबसे एक्जल्टेड पर्सनालिटी वो कैसे इसे काम करते हैं। अब दक्ष प्रजापति ने भी देखा भगवान को, वो उनके छोटी दामाद है, उनके सबसे छोटी बेटी को शादी किए थे। दक्ष प्रजापति देखा उनके फेस्टिवल में, उनके मीटिंग में, वो खड़े नहीं हुए, शंकर ने खड़े नहीं हुए, इनमें से इतने उनको बुरा लगा, इतने गुस्सा हो गया, पूरे प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया। जिसके लिए इतने बड़े मिलन हुआ था सब कैंसिल कर दिया, गुस्से में सहन नहीं कर पाया, खूब गाली गुलाज अभिशाप देकर चला गया। अरे हजारों व्यक्ति खड़े थे, सभी ने अब तो समुचित सम्मान के, एक व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ, वो फिर अपना ही तो व्यक्ति है, अपने दामाद है। मन में तो ये सोचना है खड़ा नहीं हुआ, हो सकता है उसे टांग में कोई दर्द हो, कोई तो और कोई फिजिकल रीजन भी हो सकता ना, क्यों खड़ा नहीं हो पा रहा, मेरे दामाद है, ससुर आया तो खड़ा नहीं हुआ, मतलब कोई तकलीफ तो नहीं है उसको, ये बात भी हो सकती, ये बात नहीं पूछे तुरंत गुस्से होकर के गाली दी। बाद में जब उमा देवी ने दक्ष प्रजापति के घर यज्ञ देखने के लिए उनको रिक्वेस्ट कर रहे थे शंकर जी को बार बार, शंकर जी ने मना कर रहे थे, बोले क्यों नहीं जाना चाहते, ना निमंत्रण नहीं दिए, निमंत्रण नहीं दिए तो बिना निमंत्रण में गुरु के घर में, पति के घर में, माता पिता घर में तो जाया जा सकता है। बोले बात सही कहते, लेकिन आप पता नहीं ऐसे से अभी तक शंकर जी अपने नियर एंड डियर पत्नी के सामने भी अपने ससुर के साथ झगड़ा की बात नहीं बताए थे, सालों बीत चुका था नहीं बताए थे, उसी दिन बताया उनको, तो पता नहीं चले ये घटना। तो उसको सुन करके उनके पत्नी उमा जी बोले, बोले आप भी ऐसे ही, पिताजी डैडी आए अब थोड़े खड़े हो जाते क्या हो जाता, भाई डैडी आए इतने सभी पब्लिक के सबके सामने, आप थोड़े खड़े हो जाते, क्यों नहीं खड़े हुए अपने। शंकर जी बोले, अरे पगली तू तेरे पिता के सम्मान देने के बाद ससुर के सम्मान देने के लिए बात कहते हैं, ससुर साहब को मैं सम्मान तो दे रहा था, लेकिन मेरे सम्मान देने के प्रकार कुछ और था और कुछ प्रकार से एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम दोनों अलग व्यक्ति हैं, केवल खड़े होकर सम्मान देना ये वही जानते हैं, आप ही समझ रही हो, लेकिन सम्मान खड़े होकर नहीं, और भी प्रकार से उचित प्रकार सम्मान दिया जा सकता है, उसको पता नहीं है, तो मैं क्या करूं, मैं तो सम्मान समुचित रूप से सम्मान दे रहा था, लेकिन वो उनको समझ नहीं पाया, तो उससे मेरा दोष क्या। तो इस प्रकार उन्होंने शंकर जी को इतने कुत्सित रूप से गाली दिए, इतने नीच दिखाकर गाली दी। चतुष्कंद भागवत में आप पढ़ेंगे शुरुआत में दक्ष का और शिव जी के सभा में किस प्रकार गाली दे रहे हैं। तो इस दक्ष का गाली और चित्रकेतु का जो समालोचना, भगवान शंकर को दोनों समालोचना किए, उन्होंने भी बड़े बड़े ऋषि मंडली में अपनी पत्नी के सामने चित्रकेतु ने उसे बोल दिए जिसको शंकर जी ने तो कुछ माइंड नहीं किए, शंकर जी तो अभी माइंड नहीं किए, दक्ष के बात को माइंड नहीं किए, वो तो परम इतने उच्च स्तर में है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, माइंड नहीं किए, लेकिन वो बड़े बड़े ऋषि महर्षि बैठे थे नारद आदि, उन्होंने माइंड नहीं किए, लेकिन पत्नी उमा जी पार्वती जी ने माइंड करके उन्हें साफ दे दी। तो बड़े बड़े आचार्य लोग कहते हैं कि चित्रकेतु तो उनके जानते, वो क्यों ऐसा कहे? बोले चित्रकेतु के ऐसे करे, भगवान के ऐसी इच्छा था, भगवान चाहते थे चित्रकेतु को बहुत जल्दी मैं वैकुंठ में ले आऊं। भगवान ने बहुत जल्दी वैकुंठ लाने के लिए प्रोसेस तैयारी कर रहे थे, क्या करूं, किस प्रोसेस में जल्दी आ जाए मेरे पास। तो अगर उनको वो साफ दे दे, असुर बन जाए, फिर उसको मेरा तू बहुत जल्दी आ जाएगा, नहीं तो इसे भजन करके इसे काम करके आएगा तो बहुत देर लगेगा, है ना? नहीं, इस प्रकार साधु बन करके जाएगा तो बहुत देर लगेगा। जैसे भगवान के दो पार्षद थे ना जय विजय, उनको जब कुमारों ने साफ दिए, उनके सामने में दो चॉइस रखे थे, बोले देखो वो फिर माफ कर दीजिए, हम अपने प्रभु से विलग नहीं होना चाहते। बोले तो हम तो बोल ही दिए, आप इतने गिड़गिड़ाते हैं, भोग मांगते हैं, तो एक चॉइस हम देते हैं, सात जन्म लगेगा अगर आप प्रभु को प्रभु मान करके उनके भजन करके आना चाहते हैं, सेवन लाइफ टाइम्स लगेगा। अगर प्रभु को प्रभु नहीं मानेंगे, आप शत्रु मान करके झगड़ा करके उनको मारपीट करके आना चाहते, तीन जन्म में आ जाएंगे। सभी जानते हैं ये चॉइस थी तो उनके सामने। देखिए अगर भजन करके साधु होकर जाना चाहते तो लॉन्ग टर्म कोर्स है, सात लाइफ टाइम लगा दिए। अगर इस प्रकार जाना चाहते हैं तो केवल थ्री सिटिंग में, तीन सिटिंग में हो जाए, आ जाए। तो उन्हें चूज के भाई हम तैयार है झगड़ा करने के लिए, तो क्यों? तो आचार्य कहते हैं भगवान थोड़ा चाहते थे, बहुत हो गया, थोड़ा झगड़ा तो करूं, थोड़ा हाथ भी खुजली होता है, थोड़ा लड़ाई तो करूं, किससे करूं, मेरे लायक तो कोई है ही नहीं, मेरे लायक मेरे ही व्यक्ति होंगे, मेरे बॉडीगार्ड के साथ मैं थोड़ा थोड़ा देर तक टिक सकता हूं, बाकी तो कोई टिक ही नहीं सकता मेरे साथ, आते ही वही से आउट हो जाए, खेल होगा कैसे? तो खेल के लिए तो कोई कॉम्पिटेंट पर्सनैलिटी चाहिए, तो उनको चुने थे। तो इस प्रकार से, तो इसी प्रकार चित्रकेतु को उन्होंने चुने थे, बहुत जल्दी मैं चित्रकूट को मेरे बाजू में चाहता हूं, पास में, तो इसलिए इस प्रकार क्रिएट करा। चित्रकूट के वाक्य भी आप देखेंगे तो शंकर जी को एक्जल्टेड पोजीशन को बोल के आश्चर्य प्रकट करते, वो ऐसे इतने बड़े महिमामय पुरुष होकर के इस प्रकार काम कैसे करते हैं, भरी सभा में बैठ करके बेशर्म होकर बैठे। लेकिन दक्ष के जवाब, अपने दामाद होते हुए अपने अति सबसे छोटी बेटी जिनके प्रति दक्ष का बहुत ज्यादा अटैचमेंट था, उनके पति होने पर भी उनको पब्लिकली इतने कंडेम किए, उन्होंने इतने नीच दिखाए, उनको अभिशाप दे दिए, उनको तो भगवान बहुत जल्दी बुला दिए, बुतासुर करके इमीडिएट एक सिटिंग में गए भगवान के पास। लेकिन दक्ष प्रजापति तो कितने जन्म जन्म तक गिरे हुए पड़े, बकरे के भेड़ लेकर बैठना पड़ा उनको, बताओ, बकरे के सर लगा कर। ये है शंकर महिमा नहीं जानेंगे तो निर्लज्जता का सीमा ही नहीं रहेगा। तो जो लोग शंकर जी को इस प्रकार सोचते हैं, अरे ये तो बड़े असभ्य है, उग्र है, श्मशान में रहता है कि लोग रहते हैं, कि भद्र पुरुष में जाएगा, जाएगा नहीं, क्यों जाएंगे, यहां तो जो चीज हम चाहते हैं नहीं मिलेगा, लेकिन उनको जो चीज चाहिए वही मिल सकता है क्या? कितने विरक्त है, किसी भी वस्तु में आसक्ति नहीं, किसी वस्तु में आसक्ति नहीं है। एक बार तो बोलेंगे नहीं आसक्ति नहीं, मतलब स्त्री में तो आसक्ति है, हमेशा पास में रखते हैं, स्त्री में आसक्ति है। एक बार भगवान राम जब सीता जी के विरह में जंगल में घूम रहे थे लक्ष्मण के साथ, हासीते हासीते कर करके पेड़ पौधे पत्थर को पूछ रहे थे, तो शंकर पार्वती अर्ध शंकर जी तो गाड़ी से उतर करके दंडवत प्रणाम की, पार्वती जी क्या कर रहे हैं, किसको प्रणाम कर रहे हैं? मैं प्रभु आ रहे हैं। प्रभु कौन है? नहीं, हमारे प्रभु मास्टर है। कैसी बात कह रहे हैं, ये तो हद हो गया पागलामी में, हम भी को मनुष्य पागल हो जाते तो पेड़ पत्थर से बात नहीं करेगा, वो तो पेड़ पत्थर तक जाके पूछते हैं कि सीता कहां है, उनको पूछने, इसी पागल व्यक्ति को आप प्रभु समझ के प्रणाम कर रहे हैं? शंकर बोले तो क्या आपको डाउट है? ना बिल्कुल डाउट है। ना फिर आप प्रणाम करते, मैं तो प्रणाम नहीं करूंगी ना, क्यों ना मैं प्रणाम कैसे, चेक करूंगा, बिना जाने प्रणाम क्यों करूं? शंकर जी बोले तो क्या परीक्षा? ना परीक्षा लो, ना ले लो, चेक कर लो, टेस्ट ले लो। तो पार्वती ने टेस्ट लेने के लिए सोचे, किस प्रकार टेस्ट लिए, सीता बन गए, सीता को ढूंढ रहे ना, वो सीता बन कर बाजू में हाजिर, शंकर रामचंद्र बोलेंगे कि, बोले भाई सीता तो इधर ही है, मैं क्यों रो रहा हूं, इसको पूछ रहा हूं। तो बिल्कुल पार्वती जी अगर मेकअप करेंगी, कोई है दुनिया में उनके साथ मैचिंग करने के लिए? हूबहू सीता में किसी प्रकार से आधा परसेंट भी कोई चार्ज ये नहीं रहेगा कि सीता में कोई कमी रहेगा, नहीं, 100% सीता जी बन गई। बनकर के उनके बगल में इधर उधर आगे पीछे भगवान कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो फिर वही मंडो रो रहे, लेकिन बोली क्या हो गया, मैं उनके सामने सीताजी घूम रही हूं, कुछ देख करके कुछ बार बार जो इसे किए उनकी दृष्टि आकर्षण की। अंत में शंकर जी बोले माता जी प्रभु कहां है, आप अकेले क्यों घूम रहे जंगल में? बाप रे बाप, पार्वती जी का तो ठंडा हो गया, बोली ये क्या मुझे मां बोल रहे हैं, मैं तो उनके पत्नी के रूम में सीता बनकर घूम रहे, मुझे बोलते माता जी कहां है, पुष्प ध्वज कहां है। एक मिनट एक सेकंड नहीं लगा पहचानने में, कोई अपना आइडेंटिटी देना नहीं पड़ा, पूरी तरह से अपने को छुपा छिपा करके मेकअप करके पार्वती जी, सती उनका नाम था, सती पहले काम असती का काम की, असत का काम किए उनके सामने, लेकिन भगवान एक बोले तब तो दौड़ करके भाग के रहे, बोले ये तो पकड़ा गई, उनके सामने तो कुछ चला नहीं मेरा मेकअप, कुछ मैं चला नहीं। शंकर जी आकर बैठे थे, बोले क्या क्या, मैं कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, मैं थोड़ा मन में थोड़ा डाउट आया था, जैसे आप प्रणाम किया मैं भी इसे प्रणाम करके आ गया, मैं कुछ नहीं किया। देखिए एक बार कोई सती भी अगर असत काम के काम करना चाहती है तो असत को ढांकने के लिए सकड़ो असत करना पड़ेगा, झूठ करना पड़ेगा। शंकर जी के सामने जाकर फिर झूठ बोल दी, बोले नहीं मैंने तो प्रणाम किया आप जैसे किए। शंकर जी बोले अच्छा ऐसा किया, ऐसा क्या मैं जब कर रहा था तब क्यों नहीं किया, अभी किया? शंकर जी तो सब पता है क्या किया। शंकर जी बोले तूने ऐसे नहीं किया, मेकअप तो किया था, किसका मेकअप की थी, किसका मेकअप किया था, किसका रूप लिए थी? सीताजी के, सीताजी हो मेरे प्रभु, मेरे माँ है, तू मेरे माँ हो गया अभी मेरे छुट्टी। अरे आसक्ति होता ऐसे करते हैं, केवल भगवान के साथ में डाउट आया मन में, शंकर जी ने त्याग दिया, आपने निज पत्नी को त्याग दिए, यही है उनका अटैचमेंट, जिनका भगवान के साथ संबंध है उनका है, कृष्ण जिनका है जो कृष्ण का है वो मेरा है, जो कृष्ण के नहीं है उनके साथ डाउट है, संपर्क में संदेह है वो नहीं, बस इमीडिएट छोड़ दी, बोले जाओ। कितने भारी तप कर पार्वती बनना पड़ा उनको इसी के कारण से, स्वीकार नहीं की तो कैसे कह सकते हैं कि उनके अटैचमेंट है पत्नी के प्रति, नहीं, उनके केवल अटैचमेंट है भगवान के। तो बोलेंगे फिर उमा जी को हमेशा साथ में क्यों रखते हैं, स्मशान में घर बाड़ी नहीं तब भी, क्योंकि वो भगवान के सेवक है, सेवा करने के लिए जिस जिस का आवश्यकता हो उसको साथ में रखते हैं। अरे दूसरे की बात किया, बड़े बड़े भूत प्रेत पिशाच डाकिनी चंडाली तक साथ में रखते हैं, उन्होंने तो अद्भुत अद्भुत लोगों को साथ में रखते हैं, क्योंकि संहार करता है, इसे काम करने के लिए इसी से लोगों को साथ में लेना पड़ता है। तो इसी से प्रकार के माया में फंसा कर लोगों को जो काम करने का है उनका इंचार्ज पार्वती जी बना रखे, तो इसीलिए संभाल साथ में रखे हैं, इस डिपार्टमेंट को लेकर के साथ काम करना है, भगवत आदेश है, भगवत कर्म करने के लिए ही उमा के साथ उनका संपर्क है, नहीं तो भगवान के साथ एक क्षण के लिए संदेह हुआ क्या? कितने उच्च कोटि के भगवत भक्त हैं उन्होंने, तो इसीलिए जो ये बात को जानते हैं वो हमेशा भगवान शंकर के श्री चरण कमल का हृदय में धारण करते, कितने महान है, कितने महान। जो उनको नहीं जानते हैं वो बोलते हैं कि हम शंकर आइट, हम शंकर के फॉलोअर है, वो मूर्ख नहीं जानते। अभी इसी घटना में आप देखेंगे, यही अष्टम स्कंद में जो चरित्र चल रहा है, संपूर्ण देव समाज, संपूर्ण असुर समाज, प्रजापति वर्ग, भगवान अजित भी जाकर खड़े होकर कैलाश में भगवान की स्तुति, कितने लंबा स्तुति चल रहा है आप देख रहे हैं, ये जो प्रसंग चल रहा है अभी 7th चैप्टर, भगवान की प्रशंसा। शंकर जी उच्च कोटि के भक्त हैं, भक्त का एक विशेष स्वभाव होता है, आपने मान कभी नहीं ग्रहण करेगा, अमानी होते हैं, कदापि सम्मान स्वीकार नहीं करेगा, मान स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन इतनी बड़ी सम्मान उनको मिल रहा है, पूरा कंग्रीगेशन डिवोटी इकट्ठा होकर के सब थोक में उसको खूब सम्मान कर रहे, इतनी स्तुति कर रहे। शंकर जी बोले कि तो हद कर दिए, मेरे प्रभु के सामने मुझे इतनी प्रशंसा कर रहे हैं,
कुछ बोल नहीं पाए क्योंकि सार खड़े हैं उसके, बोलते चले जा रहे, बोलते चले जा रहे, अरे बोलो सही क्या करना है ना, एक बीस, बोले चलो बीस भी पी लेता हूं। लेकिन बीस पीने के बाद भी शंकर जी के मन स्थित नहीं हुआ, और उन्हें चाह रहे थे कि जो मेरे प्रति व्यवहार किए, इतने सम्मान दिए हैं, उसको मुझे काउंट्रैक्ट करना पड़ेगा, मुझे इतने सम्मान किए पब्लिकली, तो मेरे जो भक्त हैं, जो शंकर के भक्त, वो लोग बोले देखा, बोल रहे थे गए ना सारे देवता होल, सारे असुर भगवान भी जाकर के उनके चरण पकड़ कर नाक रगड़े, देखा हमारे प्रभु कैसे हैं। तो शंकर जी की ये आगे लोग कहेंगे, शिव भक्त लोग, तो इसको कभी सहन नहीं कर सकते निज सम्मान। तो इसलिए शंकर जी जानबूझकर हमेशा सोच रहे थे क्या करूं क्या करूं, कैसे उसका कॉन्ट्रैक्ट करूं। तो जैसे अमृत निकला, उन्होंने ले गए थे, तो मोहिनी रूप में प्रकट होकर जो भगवान ने अमृत मंथन के चैप्टर क्लोज किए, भगवान शंकर को बाद में पता चला कि भगवान ने मोहिनी रूप लिए थे। बोले ये मौका, दिस इज चांस, मेरे साथ जो प्रशंसा किया गया था मुझे, तो उसको काउंट्रैक्ट करने का दिस इज अपॉर्चुनिटी। दौड़ करके गए, अकेले प्राइवेटली जाकर के मिले भगवान, अपने रेसिडेंस में भगवान जाकर मिले। बोले सार सार क्या बात ना, ये आप प्रमिज कीजिए मुझे एक मांग, एक काम करना, क्या करना, मुझे मोहिनी रूप में नहीं देखा, मुझे प्लीज देखा। बोलिए आप, और उनके साथ में उनके पत्नी थे, भगवान शंकर और माता पार्वती दोनों साथ में गए थे, जाकर रिक्वेस्ट किए शंकर, उनकी पत्नी के सामने हम मोहिनी रूप देखना चाहते। अरे आप माता जी साथ में है, कहा भाभी जी जो भी है बोलेंगे साथ में, आप कहा नहीं 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 प्लीज प्लीज प्लीज। भगवान समझ गए शंकर जी क्यों बाध्य कर रहे हैं, भगवान भक्तों के भाव समझ जाते, मनुष्य समझ गए, समझ गए। तो इमीडिएट भगवान मोहिनी रूप लिए, आप वर्णन आगे आगे पढ़ेंगे क्या हुआ है। अब शंकर जी आपने पत्नी बाजू में खड़े थे, उनको छोड़ करके ऐसे भागे निर्लज होकर के मोहिनी रूप के पीछे ऐसे भागे, और शंकर जी की इच्छा के अनुसार भगवान ने उस कॉलोनी के अंदर दौड़े जिस कॉलोनी में शंकर के बड़े बड़े भक्त लोग रहते, वही कॉलोनी के अंदर गए। सारे शंकर भक्त जीव काट करके हे करके आंख फाड़ के, वाह क्या हो रहा है भाई, बोल पाएंगे बड़ाई, ऐसे भाग रहे हैं बेसर में। तो वर्णन पूरा नहीं करना, पढ़ेंगे उसे वर्णन है भागवत में, कई सब वर्णन है। तो कभी भी फिर वो आकर के भगवान सामने दिखाते हैं कि ये मेरे प्रभु, मैं उनका दास, हमेशा ऐसा। कभी कभी वो आकर मुझे पूजा कर दे, प्रशंसा कर दे, रे मूर्ख ऐसे मत समझो कि मैं कुछ हो जाऊं, ये नहीं है, यही है स्थिति। देखो मैं दौड़ रहा हूं, वो उनके पीछे दौड़ रहा हूं, मेरी क्या स्थिति, किस प्रकार दौड़ रहा हूं, देखो सही, अपने आप स्थिति में लाते। हमेशा इतने नीच करके भगवान के चरण में रखने के लिए कितना प्रोसेस है उनका, कई बार हमेशा अपने को छोटा दिखाने के लिए। भागवत में और एक प्रसंग आएगा भगवान शंकर के दसम स्कंद में, जिसने देखा है कि इतने खुले आम बदान्य व्यक्ति है, एक ब्रकासुर करके था, उन्हें नारद जी से कंसल्ट करके जाकर के उनके भजन किया, खूब भजन किया उनका, ओम नमः शिवाय करके जप किया, वो केदारनाथ में जाकर के अरे यज्ञ वीकेंड तक किया, और यज्ञ करने से वहां तो लकड़ी तो मिल रहा था, आग में, लेकिन ये नहीं था, घी नहीं था, बोला घी लाने के लिए वो कहाँ जाऊँ, नीचे गाड़ी घोड़ा था, तो अपने शरीर में चर्बी है इसलिए शरीर को काट काट करके आग में डाल करके यज्ञ हवन कर रहा था। सात दिन तक शरीर के अंग काट कर, सातवां दिन तक कुछ बचा ही नहीं, अपने सर पकड़ कर काटने लगा, बोला उसको काट कर श्वास पूर्णाहुति कर दूंगा। शंकर जी तब भी नहीं आ रहे थे, पार्वती जी ने फोर्स किए, बोले अब क्या है, आपके नाम बदनाम होगा, आप आशुतोष है, एक लोटा पानी में आप प्रसन्न हो जाते हैं, ये अपने गला काटने पर नौबत आ गया, आप जान ही रहे क्यों, आपके क्षेत्र में आपके सामने ही कर रहा है आकर के। शंकर जी बोले मैं तो पानी देने से तो प्रसन्न हो जाता, ये ब्लड दे रहा है, मैं प्रसन्न कैसे होगा मैं क्या करूं, ये ब्लड मीट चढ़ा रहा है उसके पास में कैसे जाऊं, वो पानी एक लोटा देते तो मैं काम उसका बना दिया होता, मैं क्या करूं, नहीं 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 मर जाएगा, चलो प्लीज। पार्वती जी के कहने के, माता जी बहुत फोर्स के कहने पर शंकर जी यज्ञ कुंड से प्रकट हो गए, पकड़ होकर उसे पकड़े, बोले अरे रुको रुको क्यों गला काट रहे, छोड़ो 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 रुको रुको, अरे मैं तो पानी लोटे में प्रसन्न हूं, तू क्यों इतना, ना नहीं मैं हफ्ता भर से इसे काम कर रहा हूं, क्या बात है ना, मुझे नारद जी ने बताया सारे कहानी बताया, बोले चलो मांगो क्या इच्छा के लिए बताओ, बताओ क्या इच्छा है। एक्चुअली नारद जी से पूछा था मृगासुर ने कि मैंने बहुत जल्दी सबसे बड़ा आदमी बनना चाहता, पूरे संसार में दी टॉपमोस्ट व्यक्ति बनना चाहता हूं, व्हाट इज द इजी प्रोसेस बताओ। इजिप्त वशिष्ठ से नारद जी बोले कि देखो इजिप्त वशिष्ठ होकर तपस्या, ना मैं जानता तपस्या करूँ, किसकी तपस्या करूँ, कहाँ करूँ, तो बोले थे शंकर जी की तपस्या करो, उनके कृपा से इमीडिएट हो जाएगा सबसे बड़ा। ये प्रोजेक्ट लेकर आया था, आकर के अपने शरीर को काट करके यज्ञ करना, तप करना, इतने ठंडी पानी में 7 दिन तक रहकर वो किया, सारे भयानक तपस्या किया था। लेकिन जैसे शंकर जी प्रकट हुए, उनके बाजू में उमा जी पार्वती जी प्रकट हुए थे, उनका सारे प्रोजेक्ट फेल, देख कर भूल ही गया। इतने महा तप किया था, कष्ट उठा था, पार्वती के ऊपर एक नजर पड़ते ही सारे फ्यूज उड़ गए, भूल गया कि मैं किस लिए आया था, किस लिए कर रहा। शंकर जी बोल रहे बताओ क्या चाहिए, क्या चाहिए, और उनको भूल गया क्या चाहिए, मैं भूल गया किस लिए आया था, किस लिए करा, भूल गए। शंकर बोले लेट हो रहा है, बताओ क्या चाहिए। तो उनका मन में चल रहा है उनको पाना है, आप बड़े बनना छुपुल, पार्वती जी खड़े हैं, पार्वती जी की ये तो उनकी पत्नी है, जब तक ये बूढ़ा रहेगा तब तक तो मेरे साथ आएगा नहीं, अभी हम दोनों हैं पुरुष है, ये किस स्त्री है, तो उनको अगर हटा दूं तो मैं उसको ले जाऊं, यही उनका मन में बात चल रहा था। तो शंकर जी बार मांगने के बाध्य किए, तो इमीडिएट यही विचार है कि उनको कैसे मार दूं, कैसे मार दूं उनको, तो मैं इतने दिन अभी तपस्या 7 दिन तक तपस्या करके प्रसन्न किया, उनको प्रकट हुए, तो वर मांगा अद्भुत कि जिसके सर में हाथ रखो सर भ्रष्ट हो जाए, मर जाए। ये वर मांग सुनकर शंकर जी थोड़े सोचने लगे, मेरे कई कई दुर्बुद्ध शिष्य हुए हैं लेकिन ये तो रिकॉर्ड खराब कर दिया, ऐसा मांग इसमें क्या मिलेगा उसको इसका सर में हाथ रहेगा सर फूट जाएगा। शंकर जी ये नहीं सोचे यहां तो कोई है ही नहीं, यो है मैं हूं पार्वती वास थी ना, किसके सर में हाथ रखने की बात कर रहा है। लेकिन शंकर जी बोले जाने तो हो जाने, उसके बाहर जाने, सो लेट इट बी, हो जाने तो ठीक है हो जाए, शंकर जी ऐसे है तो जाने तो भाड़ में जाए, तू जाओ तुम मरो मैं जाऊं। उनको बोले ठीक है जाने दो, थोड़ा सोचे भी नहीं भाई क्यों ऐसा अद्भुत वर मांग रहा, जैसे वरदान दे दिए तुरंत हाथ उठाए। शंकर भगवान से थैंक यू करने के लिए साथ होता रहा, थैंक यू नहीं हाथ ऊपर उठा, बोले ये क्या मैं सर में हाथ, अरे मैं अब भी बोला कि सर नहीं, इसीलिए तो मैं इसलिए दोबारा मांगा था आपके सर में हाथ रखूं, आप हो जाए आपका काम, तो मैं पार्वती, अरे ये प्लान और का। शंकर जी बोले अभी मैंने वर दिया, अब मैं क्या करूं, पीछे हटे वो आगे बढ़ा, वो पीछे वो आगे दौड़े, उन्हीं से वर प्राप्त, उनसे तरस परस पार के शरीर उनके भी बड़े स्पेशल बना है दिव्य शरीर, दौड़ा उनके पीछे, दौड़े तो दौड़े शंकर जी, भागे दौड़े उनके हिसाब से, उनके पीछा नहीं छोड़ा, दौड़ते दौड़ते अंत में आप जानते हैं किसे भगवान आकर के किसी के, तो शंकर जी जान बूझ करके अपने महाभक्तों के सामने, अपने पत्नी के सामने कभी कभी अपना इससे विजित कर डालते हैं, उसमें उसके विजित नहीं होता, जो जानने वाले वो जानते हैं, महा इज्जत है उनका, वास्तविक उनकी इज्जत है, उसमें उनकी श्रेष्ठता बढ़ता है, कितने महान है वो, इसको साधारण लोग कैसे समझ पाएंगे। इसलिए कहा था वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञ नावश है, उनको नहीं समझ पाते हैं सभी कितने महान है वो, उनका हरेक क्रिया हरेक मुद्रा हरेक चेष्टा के पीछे कितने बड़े महान भाव है, भगवत भाव है, उसको केवल उन्हीं के कृपा से समझा जा सकता है, न तो वह कौन जान सकता है। और जो क्रिटिसाइज करेगा वो तो महाबेशरम निलज्ज है, इसलिए इसमें कहा गया जो संसारी पुरुष को नहीं जानते हैं, चाहे उनका फॉलोअर बनते हैं या उनको क्रिटिसाइज करते हैं, ये सारे बेशरम लोग हैं, निलज्ज। हरे कृष्ण।